समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रम्या। नमस्कार रम्या।
नमस्कार मनोज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लवली लिसनर्स हु हैव ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। We hope you are having a wonderful morning, and to all our listeners who are tuning in from Delhi, we hope you go out and vote today. And of course, continue listening to our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we will share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 5th of February. So let's begin with the headlines. Voting is underway for assembly elections in Delhi. The polling began at 7 a.m. this morning and will continue till 6 in the evening. Voting is taking place across all 70 constituencies with extensive security measures in place. Over 1 crore 56 lakh eligible voters are expected to cast their ballots for 699 candidates. The key candidates in the fray are Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister Atishi and Delhi Minister Gopal Rai, BJP's Vijender Gupta, Pravesh Verma, Ramesh Bhiduri and Kailash Gehlot. Congress has fielded Sandeep Dixit, Haroon Yusuf and Alka Lamba. Elaborate arrangements have been made to ensure free, fair and peaceful polling in the national capital. Over 13,700 polling booths have been set up across the 70 assembly constituency. Out of these, 70 polling stations are being fully manned by women, while 70 others are being managed by the Divyangjans. The Election Commission has deployed more than 1,80,000 polling personnel to ensure smooth conduct of election. Assured minimum facilities have been put in place at the polling centres for the voters to ensure smooth polling process. These include ramps, wheelchairs, medical teams and creche services. Delhi Metro began operations at 4 this morning to facilitate the polling personnel and others to reach on time. Counting of votes will take place on Saturday. Prime Minister Narendra Modi has urged voters to participate in large numbers in the Delhi Assembly elections today. In a social media post, Mr. Modi asked the voters to take part in this festival of democracy with full enthusiasm and cast their valuable vote. He extended his special wishes to all the young voters who are voting for the first time.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी के मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के महोत्सव में भाग लेने के लिए मतदान अवश्य करें। एक संदेश में श्री सक्सेना ने कहा कि वोट उनकी वाणी है, मतदान दिल्ली वासियों को उनकी आशाओं के अनुरूप राजधानी का स्वरूप प्रदान करने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि मतदान महोत्सव में लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मिलकर लोकतंत्र को सुदृढ़ करें और दिल्ली को मनभावन स्वरूप प्रदान करें।
Lok Sabha adopted the motion of thanks to the President's address to the joint sitting of both houses of Parliament. The motion was adopted by a voice vote yesterday after reply from Prime Minister Narendra Modi. Replying to the debate on motion of thanks, the Prime Minister highlighted his government's unwavering commitment to strengthening the values enshrined in the Constitution. Referring to the President's address, which extensively discussed the completion of 75 years of the Constitution, Prime Minister Modi emphasized the commitment to living by, dedicating themselves to, and understanding the spirit of the Constitution. He said, various steps have been taken to provide tax incentives to the middle class, resulting in more savings in the past 10 years. He said, recently the government has announced the income tax rebate up to 12 lakh rupees, which is a major step towards strengthening the finances of the middle class. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan will launch Watershed Yatra in hybrid mode today, with the theme Jal Lai Dhan Dhanya. Briefing the media in New Delhi yesterday, Mr. Chauhan said the mass outreach campaign, which aims to create awareness about the watershed development activities, will cover 6,673 gram panchayats in 26 states and 2 union territories. He added that through the campaign, awareness will be raised among the masses about water conservation and soil degradation. He urged more and more people to join the campaign. The Rural Development Ministry, in a statement, said, through the watershed yatra, the government aims to generate people's participation about watershed development activities carried out under watershed development component Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana 2.0 in project areas. The ministry said the yatra will help achieve a community-driven approach and galvanize the implementation machinery at the field level. The campaign highlights the importance of sustainable management of natural resources for improving agriculture productivity, livelihoods, and the environment. The outreach campaign will consist of the movement of vans for around 60 to 90 days across 805 projects, which cover 6,673 gram panchayats in 26 states and 2 union territories.
Ab khabrein Mahakumbh ki. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जाएंगे। इस दौरान वे त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम महाकुंभ देश विदेश से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम त्रिवेणी घाट जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा वे साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने की 19 तारीख के मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि संगम की रेती पर पूरे भारत के साथ साथ विश्व के लोग जुटते हैं और यह उत्सव विविधता में एकता का प्रतीक है।
हजारों वर्षों से चली रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं, सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है।
महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और यह 26 फरवरी तक चलेगा। 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठाए हैं। पिछले वर्ष 13 दिसंबर को प्रयागराज की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जनता के लिए संपर्क, जन सुविधाओं और अन्य सेवाओं में सुधार से संबंधित 5,500 करोड़ की 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। पिछले महीने हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति अपनाने और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए समन्वित रूप से काम करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने राज्य में आतंकवादी घटनाओं, घुसपैठ और आतंकवादी संगठनों में युवाओं की भर्ती में उल्लेखनीय कमी के लिए सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक आज मुंबई में शुरू हो रही है। बैठक शुक्रवार तक चलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार सुबह ब्याज दरों पर इस समिति के फैसलों की घोषणा करेंगे। नव नियुक्त रिजर्व बैंक गवर्नर की अध्यक्षता में ये पहली बैठक होगी। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से रेपो दर को 6.5% पर यथावत रखा है। खपत आधारित मांग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में कई पहलों की हाल ही में घोषणा की गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आरबीआई प्रमुख ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कमी कर सकता है।
US President Donald Trump has said that the United States plans to take over the war-torn Gaza Strip and develop it economically. At a joint press conference with visiting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House today, Mr. Trump said that US will be responsible for dismantling all of dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Mr. Trump also claimed of creating an economic development that would supply unlimited number of jobs and housing for the people in this area. He said, if it will be necessary, they will develop the region, create thousands of jobs, and it will be something that the entire West Asia can be very proud of. President Trump's statement comes following his remarks yesterday calling for the permanent resettlement of Palestinians from Gaza to neighboring countries, terming the enclave a demolition site. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is the first world leader to visit during the second term of President Trump.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत और इंग्लैंड के बीच कल से शुरू हो रही 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए वरुण चक्रवर्ती को भारतीय टीम में शामिल किया है। वरुण ने 14 विकेट लिए हैं, जिसमें इंग्लैंड के साथ हाल ही में संपन्न 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में राजकोट में लिए गए 5 विकेट भी शामिल हैं। गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी घोषित किया गया। वरुण को रोहित शर्मा की अगुवाई वाली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय को उस टीम में शामिल किया गया है जो कल नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ मैच खेलने के लिए तैयार है। ये मैच कल दोपहर 1:30 पर शुरू होगा।
In the Mumbai Open Tennis, India's Ankita Raina will team up with Delila Yakupovic of Slovenia against Japan's Nao Hibino and Oksana Kalashnikova of Georgia in the women's doubles pre-quarterfinals today. In another round of 16 clash, India's Prarthana Thombare will team up with Dutch player Ariane Hortano against Pyeongtan Plipuech of Thailand and Japan's Nao Sato at the Cricket Club of India in Mumbai. Indian pair of Riya Bhatia and Shivali Rashmika Bhamidipati will also face Japanese pair of Mai Hontama and Kyoka Okamura this afternoon.
अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली समाचार। दिल्ली में आज विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान जारी है। मतदान शाम 6 तक चलेगा। 1,56,00,000 से अधिक मतदाता 699 उम्मीदवारों के चयन के लिए वोट डालेंगे। प्रमुख उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, कैलाश गहलोत और कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित, हारून यूसुफ और अलका लांबा चुनाव मैदान में है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। विधानसभा के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में 13,700 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 70 मतदान केंद्रों को पूर्ण रूप से महिलाएं और 70 अन्य मतदान केंद्रों का प्रबंधन दिव्यांगजन कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सुचारू रूप से मतदान के लिए 1,80,000 से अधिक मतदान कर्मी तैनात किए हैं। ये सुनिश्चित किया गया है कि मतदान प्रक्रिया के निर्विघ्न संचालन के लिए सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं मिले। इनमें रैंप, व्हीलचेयर, चिकित्सा दल और क्रैच सुविधाएं शामिल हैं। कुल 1,56,00,000 मतदाताओं में 83,00,000 पुरुष, लगभग 72,00,000 महिलाएं और 1,267 ट्रांसजेंडर हैं। इनमें से 783 मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। दिल्ली मेट्रो की सुविधाएं सुबह 4 से शुरू हो गई है ताकि मतदान कर्मियों और अन्य लोगों को समय पर मतदान केंद्रों पर पहुंचने में कोई कठिनाई न हो। मतगणना शनिवार 8 को होगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अवकाश रहेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की स्वीकृति के बाद ये अधिसूचना जारी की गई।
मूविंग ऑन टू सम मेट्रो न्यूज फ्रॉम चेन्नई, ऑल प्रिपरेशंस हैव बीन कंप्लीटेड फॉर द ईरोड ईस्ट बाय इलेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैव बीन मूव्ड टू द पोलिंग स्टेशंस फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। पोलिंग बिगैन एट 7 AM। द बाय इलेक्शन वॉज ड्यू टू द वेकेंसी विच अरोज ड्यू टू द डेथ ऑफ EVKS इलंगोवन ऑन 14th ऑफ डिसम्बर लास्ट ईयर। A total of 46 candidates are contesting in this by-election. AIADMK and BJP did not contest the election. 237 polling booths have been set up at 53 polling centres. There are 2,26,433 voters in this constituency. Ignito Technologies, an information technology services company, has opened its new facility in Chennai focusing on artificial intelligence applications. The company plans to increase its headcount in Chennai with an initial capacity of 300 to 1,000 in 2 years. The expansion is part of the plan to grow revenue to 100 crore rupees in a year, and the center will serve as a hub for developing and deploying more AI agents using advanced generative AI models and other technologies. The company is building analytical tools and AI agents for large enterprise clients in US, UK and other countries in Europe.
महाराष्ट्र मुंबई समाचार। नीलजे रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण की सुविधा के लिए शिलभाटा रोड पर पलावा जंक्शन के पास यातायात 5 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। कोलशेवडी यातायात विभाग ने कहा कि 10 फरवरी मध्य रात्रि तक पलावा जंक्शन की ओर सभी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इस कारण शिलभाटा से कल्याण मार्ग दुर्गम होगा और यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। सभी भारी और बड़े वाहनों को निर्दिष्ट अवधि के दौरान इस खंड का उपयोग सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा। अधिकारियों ने मोटर चालकों से निर्धारित डायवर्जन का पालन करने और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए अनधिकृत मार्गों का उपयोग नहीं करने का आग्रह किया है।
मूविंग ऑन टू सम मेट्रो न्यूज फ्रॉम बेंगलुरु, द गवर्नर ऑफ कर्नाटका थावरचंद गहलोत एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द न्यूली अपॉइंटेड स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड 7 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स इन बेंगलुरु यस्टरडे। रिटायर्ड IPS ऑफिसर अशित मोहन प्रसाद took the oath as the state chief information commissioner. The governor also administered the oath of office to 7 information commissioners that included senior journalists and a retired IAS officer. Retired IAS officer Dr. B.R. Mamta, senior journalists Rajashekhara S., Badruddin K., and Rudrana Harthikote were the information commissioners sworn in yesterday along with Harish Kumar and Narayan G. Channal. After the oath ceremony, the governor greeted the members with a bouquet. The deputy chief minister D.K. Shivakumar and chief secretary Shalini Rajneesh and other dignitaries were also present on the occasion.
Kolkata. कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय व्यापार सम्मेलन विश्व बंग वाणिज्य सम्मेलन का उद्घाटन होगा। इस व्यापार सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। भूटान के किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भी इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। इस सम्मेलन में उद्योगपति मुकेश अंबानी और सज्जन जिंदल के भी शामिल होने की उम्मीद है। इस साल ये 8वां व्यापार सम्मेलन है। राज्य सरकार राष्ट्रीय और विदेशी व्यापारिक संस्थाओं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सूचना और प्रौद्योगिकी, फुटवेयर, खाद्य प्रसंस्करण और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रयास कर रही है। और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली में मध्यम कोहरा छाया रहेगा। यहां का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
नाउ फॉर सम वेदर अपडेट्स फ्रॉम चेन्नई। Chennai is expected to have fog or mist in the morning and a partly cloudy sky later. The minimum temperature would be 21 degrees Celsius and maximum around 31 degrees Celsius.
मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी 16 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम अराउंड 33 डिग्रीज।
कोलकाता में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
And Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 19 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius.
और अब समय है आज के महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 5 फरवरी है। आज ही के दिन 1679 में जर्मन शासक लियोपोल्ड प्रथम ने फ्रांस के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
In 1869, world's largest alluvial gold nugget, the Welcome Stranger, found by John Deason and Richard Oates, weighing 97.14 kilos in Australia.
आज ही के दिन 1870 में फिलाडेल्फिया के थिएटर में पहली बार चलचित्र दिखाया गया। और आज ही के दिन सन 1900 में अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य पनामा नहर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आज ही के दिन 1904 में क्यूबा अमेरिका के कब्जे से मुक्त हुआ और 1917 में आज ही के दिन मैक्सिको ने नया संविधान अंगीकृत किया।
In 1919, Hollywood heavyweights Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks and D.W. Griffith joined forces to create their own film studio, which they called the United Artists Corporation.
आज ही के दिन 1924 में रेडियो समय संकेतक GMT का पहली बार प्रसारण रॉयल ग्रीनविच से हुआ।
In 1924, first Winter Olympic Games were closed at Chamonix in France. The Chamonix Games were the first occurrence of the Winter Olympic Games.
1931 में आज ही के दिन मैक्सिने डनलप पहली ग्लाइडर पायलट बनी। 1961 में आज ही के दिन ब्रिटिश समाचार पत्र संडे टेलीग्राफ के पहले संस्करण का प्रकाशन हुआ।
In 1971, U.S. Apollo's 14 astronauts landed on the moon.
2007 में आज ही के दिन भारतीय मूल की सुनीता अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी। और अब समय है उन महान विभूतियों को याद करने का जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
First, we are remembering Indrani Rahman, who was an Indian classical dancer of Bharatanatyam, Kuchipudi, Kathakali, Odissi, and the country's first beauty pageant title holder. In 1952, she won the Miss India pageant and then represented India in the first ever Miss Universe in 1952. Later, she joined her mother Ragini Devi's company and popularized the Indian classical dance form Odissi during her international tours. Indrani has received the Padma Shri in 1969 and the Sangeet Natak Academy Award in the Performing Arts and also the Tarak Nath Das Award.
आज पुण्यतिथि है भारतीय भजन गायिका ज्योतिका रॉय की। उनका जन्म 20 अप्रैल 1920 को आमता, हावड़ा जिला, बंगाल में हुआ था। उन्होंने अपने 4 दशक लंबे करियर में 200 से अधिक हिंदी और 100 से अधिक बांग्ला गानों को अपनी आवाज़ दी। उन्होंने हिंदी फिल्मों हेतु हिंदी भक्ति संगीत भी रिकॉर्ड करवाए। ज्योतिका रॉय को 1972 में भारत के 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ज्योतिका रॉय महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पसंदीदा गायिकाओं में से एक थीं। इनके प्रसिद्ध गीत घूंघट के पट खोल, पग घुंघरू बांध मेरा नाची, मैं तो वारी जाऊं राम, कन्हैया पे तनमन आदि हैं।
We are also remembering American country music singer, songwriter and record producer Toby Keith on his death anniversary. Keith released his chart-topping debut single Should Have Been a Cowboy in 1993. During the 1990s, Keith released his first 4 studio albums, each of which earned gold or higher certification. His breakthrough single How Do You Like Me Now was the title track to his 1999 album How Do You Like Me Now. Let us listen to the song Should Have Been a Cowboy.
I bet you never heard old Marshall Dillon say, Miss Kitty, have you ever thought of running away? Say-
settling down, would you marry me? If I ask you twice and beg you pretty please, she'd have said yes in a New York minute. They never tied a knot. His heart was.
आज पुण्यतिथि है भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सुजीत कुमार की। उनका जन्म 7 फरवरी 1934 को बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने हिंदी की अधिकांश फिल्मों में खलनायक का चरित्र निभाया था। अभिनेता सुजीत कुमार भोजपुरी फिल्मों के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं। 1960-70 के दशक में भोजपुरी फिल्मों की नैया डूबने वाली थी। उस वक्त भोजपुरी फिल्मों में सुजीत कुमार ने संजीवनी फूंकने का काम किया। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया एक गीत।
तुमको पसंद हो तो तुम्हें दिल रुबा कहूं, शहजादी है बहार को जाने वफा कहूं।
आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध भारतीय योगाचार्य महर्षि महेश योगी की। उनका जन्म 12 जनवरी 1918 को राजिम छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्होंने योग को भारत के बाहर भी प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने पारलौकिक ध्यान योग में विशेषज्ञता प्राप्त की थी। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर मशहूर म्यूजिक बैंड बीटल्स भारत आए थे। ये मंत्र मेडिटेशन का ही एक प्रकार है जिसका अभ्यास बंद आंखों के साथ किया जाता है। महर्षि महेश योगी ने शंकराचार्य की मौजूदगी में रामेश्वरम में 10,000 बाल ब्रह्मचारियों को आध्यात्मिक योग और साधना की दीक्षा दी थी। हिमालय क्षेत्र में 2 वर्ष का मौन व्रत करने के बाद सन 1955 में उन्होंने अतींद्रिय ध्यान पद्धति की शिक्षा देनी आरंभ की।
Today we are remembering Bengali poet Shonkho Ghosh on his birth anniversary. Among the most respected names in the contemporary Bengali literature, Ghosh was one of the Panch Pandavas. Along with Shakti Chattopadhyay, Sunil Gangopadhyay, Binoy Majumdar and Utpal Kumar Basu, who gave a new identity to the Bengali literary world in the post Jibanananda era. Ghosh won the Sahitya Academy Award in 1977 for his book Babarar Prathana. In 2011, he was awarded Padma Bhushan and in 2016, he received the Gyanpith Award.
आज जयंती है प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की। उनका जन्म 5 फरवरी 1916 को गया बिहार में हुआ था। वे उन थोड़े से कवियों में हैं जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मान सम्मान मिला। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। प्रारंभ में ही उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आए। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आज जन्म दिवस है हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता अभिषेक बच्चन का। उनका जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई में हुआ है। अभिषेक बच्चन ने अपने सुपरस्टार पिता अमिताभ बच्चन की छाया में अपने फिल्मी करियर को प्रारंभ किया। अमिताभ बच्चन का पुत्र होने के कारण जहां उन्हें अच्छी फिल्में मिलने लगी, वहीं दूसरी ओर कुछ विशेष सफलता उन्हें नहीं मिली। उनकी कुछ फिल्में असफल रहीं, परंतु धीरे धीरे उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अलग छवि बना ली। फिल्म सरकार, युवा, बंटी और बबली से उन्होंने अपने अभिनय कौशल का भी प्रमाण दे दिया। अपने अभिनय के साथ साथ उन्होंने फिल्म ब्लफ मास्टर में गाना भी गाया।
मेरी राजनीतिक गणित ही मजबूत है, असली गणित में तुम्हें फेल हो।
ठीक है, कहीं और से शुरू करते हैं। अच्छा बताइए, हरित प्रदेश में कितने वोटर थे?
1,98,40,812 2019 की फिगर है।
और विधानसभा कितने?
90।
So voters, now it's time for us to ask you to exercise your right and go out and vote today and fulfill your duty as a responsible citizen. And as Jens Stoltenberg has said, by voting, we add our voice to the chorus that forms opinions and the basis for actions. And we hope that you stay tuned.
और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय द मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.